मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत आज हम लोग वॉरेन बफे का जो 5/25 का जो सिद्धांत है, कैसे इसे हम सिविल सर्विस पर अप्लाई कर सकते हैं, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन पर, इस पर हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन आइए कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कल आपने न्यूज में सुना, दूरदर्शन की न्यूज पर देखा भी और आज अखबारों में भी आप पढ़ रहे होंगे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनके परिणाम आ गए हैं। और उनके परिणाम आपको बहुत अच्छे से मालूम है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय प्राप्त की है वह ऐतिहासिक है। इतना बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को आजादी के बाद अभी तक नहीं मिल पाया, वो आप पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदल गई है पार्टी के हिसाब से। पहले भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में थी, अब वहां कांग्रेस आ गई है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गुजरात में आपको भी सफलता मिली, आप मतलब आप पार्टी को भी सफलता मिली है। ये तीन अलग अलग दृश्य हमारे सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था के वर्तमान में हैं। हिमाचल प्रदेश यह सिद्ध कर रहा है कि नहीं, सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है, कोई भी पार्टी पूर्णतः अजेय नहीं होती है, राइट? भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात में इतनी ऐतिहासिक विजय हुई है वह इस बात को दिखा रही है कि अगर आप सुशासन करते रहे, जनता को साथ लेकर चलते रहे और जनता का समर्थन प्राप्त करने वाले काम करते रहे, या चाहे जो भी स्थितियां हों, अगर जनता आपके साथ है तो सातवीं बार भी लगातार आप सरकार बना सकते हैं और पहले से बेहतर बहुमत से सरकार बना सकते हैं। अदरवाइज सामान्यतया यह होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ असंतोष उभरता है और वह असंतोष मतदान में दिखाई देता है, लेकिन यहां उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है। तो यह भी एक परिदृश्य है। तीसरा है आप पार्टी के किस तरीके से आप पार्टी देखे, धीरे 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 अपना फैलाव करते चली जा रही है। दिल्ली से इसने अपने सरकार की शुरुआत की थी, फिर पंजाब में इसकी सरकार बनी, अब दिल्ली के जो नगर निगम है उस पर भी इसका अधिकार हो गया है और अब गुजरात में भी इसका खाता खुल गया है। इसका मतलब है कि अगर राजनीतिक दल सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, तो उनकी भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये तीन परिदृश्य वर्तमान के हैं जो आपके दिमाग में दर्ज होने चाहिए, ताकि जब आप विश्लेषण कर रहे हों राजनीतिक व्यवस्था की या लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो आप इस नए परिदृश्य को उसमें शामिल कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर का है, जिला अदालतों की स्थिति सुधारने की जरूरत, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके बारे में ये एडिटोरियल कमेंट है। तीन पॉइंट्स इसमें दिए हैं। पहला, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे, कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति, उन्होंने न्यायाधीशों से कहा था, जो हायर कोर्ट के न्यायाधीश हैं, कि आप ये जो लोअर कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके साथ कॉलोनियल मानसिकता से व्यवहार मत कीजिए, उपनिवेशवादी मानसिकता मत रखिए, यानी कि उन्हें भी सम्मान दीजिए। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ये फोर्थ पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है उदाहरण के तौर पर शामिल करने के लिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि ये देखा गया है कि जो लोअर कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जिला अदालत हम लेकर के चलें, वो जमानत देने में डरते हैं और इसीलिए जमानत नहीं देते। डरते इसलिए कि यह कह दिया जाएगा कि इसने भ्रष्टाचार में कुछ ले लिया होगा, रिश्वत ले ली होगी, इसलिए जमानत दे रहा है, तो यह भी स्थिति बेहतर नहीं है। और तीसरी बात जो सच में बड़ी विचित्र सी है वो ये है कि जिला न्यायालयों में सुविधाएं नहीं है और जिन सुविधाओं की बात की गई है उसमें सुलभ वाली सुविधाएं की बात है। आप सोच करके देखिए कि महिला न्यायाधीश होती हैं, महिला वकील होती हैं, बकायदे महिला वहां लोग जो गवाही के लिए महिलाएं आती हैं, और वहां सुलभ सुविधाओं का न होना, टॉयलेट का न होना, सुलभ मतलब आप समझ गए होंगे, अपने आप में सचमुच कितनी दयनीय बात है। जहां तक तीसरी सुविधाओं का सवाल है, क्या सच में इसके लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, कुछ नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है, कोई एक्ट पारित करने की जरूरत है? प्रशासन में मैं भी रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये अभी इस स्थिति में क्यों है। सरकार के पास बकायदे बजट होता है, बिल्डिंग के रखरखाव के लिए बजट होता है, उसमें क्या आप इसे प्रायोरिटी में नहीं रख सकते? बजट इतना कम तो नहीं होता है कि टॉयलेट तक न बनवाया जा सके? दोस्तों, समझ में बात नहीं आती है। लेकिन इस एडिटोरियल कमेंट को आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे लोअर कोर्ट है, जिला अदालत है, उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। दोस्तों, एक विधेयक पारित हो गया है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक, इस पर आज अखबारों में दिया हुआ है। रेडियो न्यूज में भी ये बात थी, ये संशोधन विधेयक है। इसके दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, या यूं कह लीजिए कि तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो इसको लेकर के जो इंटरनेशनल लॉ है, अब भारत उस इंटरनेशनल लॉ को भी अपने यहां शामिल कर सकेगा, उनके अनुसार काम कर सकेगा। जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि वन्य जीवों से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उसमें जो जुर्माना है उसकी राशि बढ़ा दी गई है। जो अधिकतम राशि है वो 5,00,000 रुपए तक कर दी गई है, जो अभी तक मात्र 25,000 रुपए थी, और जो न्यूनतम राशि है उसे भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, जब राशि बढ़ा दी जाती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भय भी बढ़ता है। और तीसरी बात यह है कि वन्य जीवों के साथ ही कुछ ऐसी वनस्पतियों को भी शामिल कर लिया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन्य जीवों के साथ ही कुछ ऐसी वनस्पतियों को भी शामिल कर लिया गया है जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, आप इन्हें भी नष्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इस पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। अदरवाइज खासकर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो अधिनियम कानून हमारे यहां बने हुए हैं उन्हें आप अपडेट कर लें। दोस्तों, आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिला सुप्रीम कोर्ट की फिर से एक टिप्पणी की जो कानून है वो कानून होता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के लगातार एक बहस की स्थिति बनी हुई है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। कल हमारे राज्यसभा के सभापति जी के स्टेटमेंट के बारे में मैंने आप सबको बताया था, उसी स्टेटमेंट के जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर जो बात कही है वो ये है कि संसद को ठीक है कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी उस कानून की समीक्षा करने का हक है। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और जो कॉलेजियम सिस्टम है ये देश का कानून है और कानून का पालन किया ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी तीखी टिप्पणी की है और वो ये है कि कल यदि ये कहा जाने लगा कि हमारे संविधान का तो बुनियादी ढांचा कोई है ही नहीं, संविधान की आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तब फिर क्या करेंगे? क्या उसे भी खत्म कर दिया जा सकता है? क्या उसे दस्ट किया जा सकता है? इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार खासकर न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से हो इसको लेकर के सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक तीखी बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन जो हमारे कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री, उन्होंने एक बात स्पष्ट किया है, वो ये है कि सरकार का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके तहत वो फिर से जो नेशनल जुडिशियल जो आयोग गठन करने की बात कर रही थी, जो उसने पहले कानून बना भी दिया था जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, ऐसा कोई हमारा विचार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हो सकता है कि अब इसके बाद से, खासकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद से, यह विवाद थम जाए, बट लेट अस सी। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। 5/25 के बारे में मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब अपनी अपनी तरफ से सोचिए कि कैसे इसे अप्लाई किया जा सकता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के, और खासकर जो हम पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं उसके आधार पर। आप लोगों ने बहुत सारे मेल लिखे, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, बहुत लोगों ने वो भी कवर किया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी दृष्टि में था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं किसे मानता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये नहीं है कि चार सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है या आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब आप लोगों ने लिखे और वो अपनी जगह सही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है, बहुत व्यापक सिलेबस होता है। इस सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट परेशान होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं कि कुछ तो लिखित सिलेबस है और कुछ अलिखित सिलेबस है, और मुझे लगता है कि जो अलिखित है ना वो लिखित की तुलना में कई गुना ज्यादा है, तो आप भ्रमित होते रहते हैं, ऐसे में आप क्या करें? तो मेरे जो कहने का मतलब था वारेन बफे के आधार पर वो ये है कि आप देखिए कि पूरे के पूरे सिलेबस में, जैसे कि 25 में देखिए कि 5 कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो पूरे के पूरे सिलेबस में देखिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सब्जेक्ट से संबंध नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी है या हिस्ट्री की तैयारी करनी, नहीं, सभी विषयों पर आप इस पद्धति को लागू कीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप केवल उन पर फोकस कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। मैं फोकस करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वाक्य को थोड़ा सुधार दूं, केवल शब्द मैं हटाना चाहूंगा, आप उन पर फोकस कीजिए। देखिए सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि जब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि फिर वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर बीच की कड़ी को आप छोड़ देंगे, आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो आगे की चीजों को कैसे पकड़ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है विषय को समझने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर वर्षों में पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो पांच में शामिल है, 25 में पांच, इन पर आपको फोकस करना है। याद रखिए प्री एग्जामिनेशन में भी ये देखा गया है और मेंस में तो बहुत ही ज्यादा देखा गया है। मुझे लगता है कि मेंस में जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वो पूरे सिलेबस को समान दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है कि यह तैयारी करने का सही वैज्ञानिक तरीका नहीं है, यहां समान दृष्टि की जरूरत नहीं है। यहां आपको कुछ को ज्यादा महत्व देना होगा, कुछ को कम महत्व देना होगा, कुछ को सामान्य महत्व देना होगा, यानी कि बीच बीच का रखना होगा। और देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग आती है दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग आती है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देखने के बाद, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। वहां से आपको अनुमान लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जब भी मैं किसी टॉपिक पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी और मैंने उसी के अकॉर्डिंगली उसमें शामिल भी किया है कि यह टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां भी मैंने बताया कि बस इसे सामान्य रूप में सुन लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा, बस थोड़ी सी जानकारी इसके लिए पर्याप्त होगी। मुझे लगता है कि तैयारी इसी तरह से की जानी चाहिए और इसीलिए मैंने वॉरेन बफे के सिद्धांत को इसमें शामिल किया था। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। सूर्यांश शुक्ला कानपुर के हैं, उनका मेल मिला है, उन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त हुई है। तो सूर्यांश आपकी सफलता के लिए मैं अकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आशीष सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, रोहितास गुर्जर जयपुर से, पुलकित उषा सरकार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। अब मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।